आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जाने माने स्लाइड गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य जी के साथ। पंडित देवाशीष को 1984 में भारत के राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला और ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किए गए 2009 में। इसके अलावा उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने गिटार पर शास्त्रीय धुनें बजाने के लिए अनोखे स्लाइड गिटार की रचना की। ये गिटार कैसे आम गिटार से अलग है और इसकी प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, इसके लिए वो बताते हैं।
जब हम 1960s के हम पैदा हुए जनरेशन है, उस जमाने में आम गिटार हवाइन गिटार को भी कहा जाता था, जो कि लैप में गोद में बैठा के छह तार छेड़ के बजाने वाले गिटार था। हालांकि मैंने जो गिटार सुना उसमें लोग ज्यादातर पहला तार और दूसरी तार में ही भरोसा करते थे, बाकी तार का छेड़छाड़ उनके लिए नामुमकिन था। पैदाइश मेरा भारतीय राग संगीत के परिवार में
जी।
और सुन रहा हूँ ताने चल रहा है जबरदस्त, दादा दिन दिन दा इस लय पे, और ये जो सुनने के लिए मुझे मिला और सीखने के लिए मिला, तो मैं जैसे उसको गिटार में बजाने बैठा तो देखा अरे ऐसे तो कोई रेफरेंस है नहीं मेरे सामने, किसी ने बजाया नहीं कभी। मैं समुन्दर पार करके सब जगह पे, नदी पार करके, पर्वत पार करके सब जगह पे ढूंढा तो मुझे तो वो गोवर्धन गिरी नजर ही नहीं आया। मुझे तो पता ही नहीं चला ये कैसे बच सकता है। उसके बाद जैसे रविशंकर जी, विनायत खान साहब वगैरह वगैरह, ये सब बड़े बड़े लोगों तब उस जमाने में, और उस जमाने वो एकदम बेतोड़ बजा रहे हैं, उसके साथ सब चिकारी तरवे लगे हुए हैं और क्या माशाल्लाह क्या बजा रहे हैं उसमें। तो मैं तो सोचा रे हमारा छेतर वाला गिटार में ये कैसे बजेगा। तो ये जो परिस्थिति था ये मुझे मजबूर किया है कुछ नया करने के लिए, सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व करने के लिए बचपन में ही
जी।
तो इसलिए मेरा 15 साल की उम्र में जब हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सब दो तार में रविंद्र संगीत बजाने वाला होते थे और स्लो स्लो सॉन्ग बजाते थे 2-3 मिनट का, उस समय मैं भगवान की दया से अपने मन से पहला इंडियन क्लासिकल गिटार बनाया जो जिसमें तरवे लगे हुए हैं सरोद के तरफ और चिकारी सामने, जैसे सितार सरोद में चिकारी पीछे बजता है
जी।
हमारा चिकारी सामने, हमारा इंस्ट्रूमेंट तो टेबल जैसा फ्लैट है लैप के ऊपर, इसलिए सामने चिकारी लगाया, फिर धीरे धीरे उसका साउंड डेवलप किया है। वेरी लकी दैट गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटीज।
आपने अपने एक एल्बम बियॉन्ड रागा स्फीयर के बारे में कहा है कि ये आपका एक चुनौती भरा एल्बम था, कौन सी ऐसी चुनौतियां थीं इस एल्बम के लिए?
सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे साथ अपने साथ आपका जो लड़ाई, अपना एक काबिलियत और एक तो ना काबिलियत, तो ये दोनों में जो लड़ाई, उसमें तो काबिलियत को जीतना पड़ता है हमेशा कोई भी सक्सेस पाने के लिए। और दूसरा लड़ाई था म्यूजिशियंस के साथ, जो ये मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें कौन म्यूजिशियंस वो राजी होंगे, फिर उनको टाइम मिलेगा, वो तो बाहर के म्यूजिशियंस थे सब, अमेरिका का, यूरोप का, सब अलग अलग जगह के म्यूजिशियंस थे। हमने इंटरनेट के जरिए, हमने स्काइप में कनेक्ट करके, हमने रियल टाइम रिकॉर्डिंग किया कलकत्ता में स्टूडियो और अमेरिकन स्टूडियो।
क्या बात है।
तो ये सब चुनौती था। फिर उसके बाद इंडियन, सबसे बड़ी बात है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हम एक छात्र है, हम एक घर की है, हमारा टेस्ट रुचि उसी का है, उसमें फ्यूजन को किस तरह रेस्पेक्टफुली यूज किया जा सकता है, जिसमें इंडियन रागा का जो सुर का जो मेलोडी का जो प्यार है
जी,
वो ना टूटे, उसका जो लालित्य है, धुन का जो नम्रता है, वो कभी सैंडविच जैसे ना बन जाए। ये सारे चीजें हमको ध्यान में रख के ये रिकॉर्ड, उसके सबसे बड़ी बात है, देखिए दुनिया में दो किस्म का चीज है, एक तो आप जो समझते हैं, आप समझते हैं बाकी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं, आप उसको सिखाइए, समझाइए, बताइए जो, हाँ उसमें कोई दोष नहीं है, मगर एक और दूसरे तरीका भी ये भी है जो आप खुद उनकी जगह पे अपने आप को बैठा के उनके लैंग्वेज में आप कुछ कहिए जो उनको लगे जो वही कह रहा है
जी।
एक दूसरा आइडिया है तो मैंने हमेशा देखा वो दूसरा आइडिया ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। लिविंग ऑन एज का एक तो ये सबसे बड़ी चीज अपने यू हैव टू सरेंडर टू द एनीथिंग कैन हैपन सिचुएशन ऑल द टाइम।
इस तकनीकी दौर में संगीत भी बटनों में कैद हो गया है, डिजिटल म्यूजिक, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कहीं संगीत की उन्नति है या ये कहीं उसकी उन्नति में बाधा डाल रहा है?
देखिए दोनों ही कहूंगा। देखिए धीरे धीरे दुनिया में जितने तरक्की होगी, दुनिया में अभी 6 बिलियन लोग से ज्यादा लोग रहते हैं, तो इतने सारे लोगों को कोई भी चीज कैटर करने के लिए हमारे पास कोई प्योरिटी नहीं रह सकता है। आज कोई चीज एनालॉग अगर करना होगा तो इतने सारे लोगों के पास म्यूजिक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। डिजिटाइज होने के बाद ही म्यूजिक स्पॉटिफाई में आया है, MP3 हुआ है, वीडियो आया है, MP4 है, MPEG, ये सब डिजिटाइज होने के बाद ही हुआ है। देखिए अगर लोग मोबाइल में देख सकता है तो अच्छा है ना, म्यूजिक उसके पास भी पहुंच रहा है, दिस इज पॉजिटिविटी। और एनालॉग के बारे में मैं कहूंगा एनालॉग प्योरिटी है। आपको तो कोई किसी ने मना नहीं किया, आप एनालॉग प्रोडक्शन करो तो बाधा नहीं है, आप करो, मगर करने वाले मन लोगों के पास कम हो गया है, इसलिए एनालॉग करने से म्यूजिक का एक जो कंटिन्यूटी, एक फ्लो है, जैसे हवा, हवा कोई तो बंद बंद होके रुक रुक के नहीं जाता है, चलो अच्छा इधर से बायां मोड़ लो, तो एनालॉग वही है।
तो क्या उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है? क्या हर दूसरा इंसान एक संगीतकार बन गया है?
नहीं, वही तो संगीत का सबसे बड़ा खतरा वही पैदा हो गया जब लोग सोचते हैं मैं भी कलाकार हूँ और मैं भी संगीत कर सकता हूँ, मैं भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं भी बजा सकता हूँ, मेरा भी ये है। कहते हैं जो गाने वाला और बक बक करने वाला सब है, सुनने वाला कोई नहीं है।
जी, आपने संगीत सुनने वालों की बात की, तो कोई एक ऐसा अनुभव तो आपको हुआ होगा जो आपके लिए यादगार बना होगा।
जब मैं अपने पिताजी के सामने रात को 12 बजे रोज दरबारी कनाडा का आलाप सुना के उनको संतुष्ट करके मैं बचपन में सुने जाता था उनके साथ, वो जो मुहूर्त है, उनको सुनने का जो मुहूर्त है, वो मेरे जिंदगी का सबसे अनुभवी, सबसे कीमती हर पल उसकी मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है
जी।
मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हर संगीत कलाकार को ऐसे महान पिता मिले जिनके सामने रोज उनको संतुष्ट करके उनको सोने का इजाजत मिले।
क्या बात जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप अपने संगीत से सारी दुनिया को मंत्रमुग्ध करते रहें।
थैंक यू अनिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए मुझे बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार, और सुर में रहे सब और ताल में रहे सब, यही हमारा भगवान से प्रार्थना आप सबके लिए।